हरे कृष्णा। तो यहाँ पे गोवर्धन इको विलेज में आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत है। तो हर रविवार को हमारा ये रविवारीय सत्संग कार्यक्रम प्रोग्राम होता है, जिसमें 10:30 से 11 बजे तक कीर्तन होता है, 11 से 12 बजे तक कथा होती है, और 12 से 12:30 जो है राजभोग आरती, और 12:30 बजे सबके लिए भोजन की व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार से ये रविवारी सत्संग प्रोग्राम जो है रहता है। तो अभी यहाँ पे 11 से 12 कथा होगी, क्योंकि बहुत ही जल्द यानी 30 तारीख को श्री राम नवमी का महोत्सव हम मनाने वाले हैं, श्री रामचंद्र अवतरित होने वाले हैं। तो आज के हमारे कथा का जो विषय है वो है रामायण के उपदेश। तो बहुत ही सुंदर कथा होगी। तो आप सभी से विनंती है कि इस कथा में भाग ले, और इस कथा के दौरान जो लोग यहाँ पे बैठे हैं उनके लिए कूपन, प्रसादम कूपन की भी व्यवस्था की जाएगी, विशेष स्पेशल प्रसादम रहता है, तो कूपन भी बांटे जाएंगे जो कथा में भाग ले रहे हैं। तो कृपया करके यहाँ पे, अभी कथा यहाँ पे व्यासासन है, तो कृपया करके यहाँ पे मुड़ जाइए, ऐसे आ जाइए सब जो दर्शन ले रहे हैं, बाकी सब जिनका दर्शन हो गया यहाँ पे बैठ जाइए। तो आज के हमारे कथाकार है श्रीमान रूप रघुनाथ प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। यहाँ पे जो माताएं खड़ी है कृपया करके आप बैठ जाइए। और जो पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाइए। तो हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि रामनवमी से पहले हमें श्री रामचंद्र जी के बारे में सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो यहां पे मैं श्रीमान रूप रघुनाथ प्रभु जी का सारांश में परिचय दूंगा। श्रीमान रूप रघुनाथ प्रभु जी जो है, इन्होंने 1989 में प्रभु जी ने आश्रम ज्वाइन किया था, और तब से लगभग आज 40-45 साल से प्रभु जी यहाँ पे गीता भागवत का प्रचार कर रहे हैं, और यहाँ पे पूरी जो कम्युनिटी है उनको प्रेरणा दे रहे हैं। तो जब उन्होंने ज्वाइन किया ये राधा गोपीनाथ मंदिर, हमारा जो गिरगांव चौपाटी में जो मंदिर है यहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया था, और वहाँ पे उनकी सेवा थी, अर्चो विग्रहों की सेवा थी। और फिर कुछ साल वहाँ पे वो सेवा करने के बाद प्रभु जी ने पूरा प्रचार में खुद को दे दिया। तो पूरे महाराष्ट्र में प्रभु जी प्रचार करते हैं, और यहाँ के पालघर जिले में आप देख रहे हैं इतना सुंदर प्रचार हो रहा है। तो उसकी नींव जो है वो प्रभु जी ने डाली है। तो आज हजारों लोग प्रभु जी ने यहाँ पे इस हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़ाए हैं, और उनके जीवन में हम देख रहे हैं पूरा परिवर्तन हुआ है। तो प्रभु जी जो है प्रेरणा स्थान है, यहाँ पे जो सुंदर कम्युनिटी है उनके लिए भी प्रेरणा स्थान है, वरिष्ठ भक्त है, और हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि उनके मुख से आज हमें ये श्री रामचंद्र जी के बारे में सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो उनका यहाँ पे हम 3 बार हरि बोल बोल के उनका स्वागत करेंगे, एक साथ हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम रघुपति राग। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय। सब बोलिए सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीता रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे, जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे, जय गौरांग नेताय गौरांग नेताय गौरांग नेताय, जय गौरांग नेताय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय नेताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नेताय गौर
गौर प्रेमानंदी हरिनाम संकीर्तन की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय। अमज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं, वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश, नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात्य देश तारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज के रविवार सत्संग में आप सबका स्वागत है। कुछ ही दिनों में हम, जैसे प्रभु जी ने पहले बताया कि बड़ा महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं, श्री रामनवमी उत्सव, जो राम कथा है रामलीला बहुत ही मधुर है। और वैसे देखा जाए जितनी कृष्ण लीला प्रसिद्ध नहीं है उतनी रामलीला ज़्यादा प्रसिद्ध है भारतवर्ष में, और भारत में ही नहीं बाहर देशों में भी। आप कभी इंडोनेशिया थाईलैंड में जाएंगे वहाँ पे ऐसे जो रोड्स है उसके नाम है रामा स्ट्रीट्स, और ऐसे जो हम लोग रामलीला जो यहाँ ड्रामास करते हैं नाट्यलीला करते हैं वैसे थाईलैंड उनकी भाषा में भी ऐसे राम ड्रामास होते हैं राम श्री रामचंद्र के ऊपर। तो इतना सारे संसार में जो राम कथा है रामलीला जो बड़ी प्रसिद्ध है और सबको समझने में भी आसान होती है। कृष्ण लीला जो है समझने के लिए भक्तों से मैं सखा चेत रहस्यम हेतुत्तमम, कृष्ण लीला समझने है तो पहले भक्त बनना पड़ेगा। भक्तों से मैं सखा चेत कृष्ण गीता में कहते हैं, और रामलीला जो है समझना थोड़ा आसान हो जाता है, और चैतन्य लीला तो और भी ज़्यादा आसान है। तो ऐसे जो रामलीला है राम कथा है उससे हम खाली ये जो इतिहास है, क्योंकि रामलीला जो है एक लीला है भगवान ने सुंदर, क्योंकि भगवान जब भी प्रकट होते हैं, जन्म क्रम चिम्मे दिवम एवं व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जन्म। क्यों भगवान अवतरित होते हैं? भगवद्गीता में सातवें अध्याय में कहते हैं, यदा यदा ये धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानी होती है मैं प्रकट होता हूँ। उससे आगे और महत्वपूर्ण कार्य बताते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशय च दुष्कृताम। जब जब धर्म की ग्लानी होती है और जब पवित्र जो लोग हैं, संत जो संत है वैष्णव, उनको रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, परित्राणाय साधन विनाशय च दुष्कृताम, ये अगला कारण बताते हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण कारण जो है आगे के श्लोक में बताते हैं, क्या है? जन्म कर्म चिन्मय देवम एवं वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जन्म। जन्म कर्म चिन्मय देवम, भगवान के जो जन्म और कार्य जो है ये दिव्य है। इसलिए तो सर्व सामान्य व्यक्ति के जो कार्य होते हैं और भगवान के जो कार्य होते हैं उसमें फर्क होता है। कई बार ऐसा होता है कि सर्व सामान्य व्यक्ति सोचने लगता है कि वो भी तो व्यक्ति है, मैं भी व्यक्ति हूँ, मैंने कुछ किया तो फिर उन्होंने, मैं भी वैसे कार्य कर सकता हूँ। लेकिन भगवान जो है इनका व्याख्या ही ऐसे है कि जो सबको नियंत्रण करते हैं कि उनका कोई नियंत्रण नहीं है। भगवान इस शब्द की व्याख्या ऐसी है कि सबके स्रोत हैं, उनका कोई स्रोत नहीं है। जो सबके स्वामी हैं लेकिन उनका कोई स्वामी नहीं है, ये मतलब भगवान। कई बार लोग बोलते हैं कि मुर्गे पहले कि अंडा पहले तो इसके ऊपर लोग, भगवान अगर है तो उनका भी जो उनको जो जन्म दे वो बड़े उनसे नहीं। लेकिन भगवान की व्याख्या ही यह है कि जिनका जो सबके स्रोत है, जैसे हमारे स्रोत है हमारे माता पिता हैं, उनके स्रोत है उनके माता पिता, उनके स्रोत है उनके माता, वैसे पीछे पे जाएं कहाँ जाएंगे? मनु के पास जाएंगे, जो सबके स्रोत है। वो फिर कहाँ से आए? ब्रह्मा जी से आए। वो कहाँ से आए? फिर गर्भोदक्ष विष्णु। वो कहाँ से आए? कर्णोदक्ष विष्णु। कहाँ से आए? संकर्षण, फिर नारायण, फिर कृष्ण। अंततः जो है हम पीछे पीछे जाएँ कहाँ जाएंगे? कृष्ण के पास। सबके कुलदेव कृष्ण है। वैसे अगर शास्त्र के द्वारा देखते तो जो सबके स्रोत हैं उनका कोई स्रोत नहीं, सबके नियंता है लेकिन उनका कोई नियंत्रण, वो भगवान है। तो ऐसे भगवान के लीलाओं को जब समझते हैं, उसको श्रवण करते हैं, बार बार श्रवण करते हैं, तो क्या होता है? त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जन्म, उसे वापस इस धरातल पे या इस संसार में वापस दुख भोगने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस संसार में आते हैं तो सबका एक ही होता है कि आनंद चाहिए, सुख चाहिए। हम जितना भी कष्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं, जो भी करते हैं, पीछे कारण क्या होता है? एक ही इच्छा होती है कि सुख हो जाए, आनंद रहे, दुख मिट जाए। हम भगवान मंदिर में भी जाते हैं, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाचिन, हम लोग वही गाते हैं कि सुख आने तो दुख मिटने दो। तो लेकिन ये सारे जब हम करते हैं तो ये सब करने के बाद में, कष्ट करने के बाद में, हम जब मुंबई के लोकल में जाते हैं और शाम के इतने कष्ट करने के बाद किसके ऊपर क्या सुखी है, बोले इतना तो नहीं, आसान नहीं है सुख प्राप्त करना चाहिए। इसलिए मराठी में कहावत है, सुखी व्हायचा असेल तर सुखी माणसाचा सदरा घाला क्योंकि ऐसा शर्ट किधर मिलता है? अगर सुखी होना है तो सुखी व्यक्ति है उसका शर्ट पहनो, लेकिन ऐसा शर्ट किधर मिलता ही नहीं है तो इसलिए रामायण जो ग्रंथ है ये भगवान की लीला है, साथ साथ एक इतिहास है, हिस्ट्री है। ऐसा नहीं कि कुछ तो जैसे लोग आजकल कादंबरी लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं, तो एक जो ऑथर होता है, जो लेखक होता है, उसकी कल्पना होती है, वो कल्पना के स्तर पे वो लिखता है कि ऐसा था, ये गांव था उधर, जो भी उसकी कल्पना में आता वो लिखते जाता है। लेकिन जो रामायण है, महाभारत है, ये तो लीला तो है, अपनी कल्पना से पर है, लेकिन साथ साथ एक हिस्ट्री है, इतिहास है। और इससे भी बढ़कर ये है रामायण और ये महाभारत कि इससे हमें क्या सीखना है। भगवान लीला करते हैं, खाली लीला करने के लिए तो करते हैं, लेकिन उससे महत्वपूर्ण भगवान की इच्छा होती है कि लीलाओं को देखकर ये जीव इस संसार में दुख भोगत रहे वो मेरी ओर आकर्षित हो, तत्वतः वो जाने, लीलाओं को जब जानेंगे तो इस संसार के जो आकर्षण है ये आकर्षणों को भूल जाएंगे, क्योंकि इस संसार के जो आकर्षण है हमें यहाँ पर बंधन के लिए कारण बन जाते हैं, जो भी इस संसार के आकर्षण, क्योंकि इस संसार का कोई चीज़ हमारे साथ अंततः जाता नहीं है, कोई पैसा जाता नहीं, कभी जमीन जाता नहीं, कोई ना सगे संबंध कुछ नहीं जाता है, तो सब कुछ यहीं पर छोड़ के जाना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते कि आकर्षण भी बनाओ, ऐसी जगह पर आकर्षण बनाओ कि अगला जो प्रवास होगा हमारा उसमें मदद होगा। इस संसार में जीते समय ऐसे जिए, ऐसे कार्य करें, इस संसार में भी आप लोग का लोग हमारा नाम निकालें, और जाने के बाद जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर भी हमारा मार्ग सुखद हो। लेकिन जब किसी का डेथ होता है ना, लोग मृत्यु के बाद फोटो बनाते हैं ना, और फोटो के नीचे नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पहले श्री श्रीमान लिखते हैं, श्रीमती लिखते हैं, मृत्यु के बाद क्या लिखते हैं, वैकुंठवासी, स्वर्गवासी, कैलाशवासी, वाड़ावासी नहीं लिखते हैं, या भीमंड कल्याणवासी नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, स्वर्गवासी, मतलब वहाँ जाना है। वो अभी व्यक्ति जो मर गया वहाँ जा रहे हैं, वो निकल गए वहाँ जाने के लिए, तो वहाँ की तैयारी जो है ये कथा से आती है। जो भी हम अध्यात्म करते हैं, जो भी हम सत्संग करते हैं, ये सबका लाभ जो है हमें जो इस संसार में, तो क्योंकि जब हम मैंने कहा कि लीला है, इतिहास है, साथ साथ है हमारे लिए शिक्षा पद्धति, जीवन पद्धति है। महाभारत क्या जीवन पद्धति है, जो मेरा नहीं है उसको मेरा कहना, वो महाभारत अपना नहीं है लेकिन ये मेरा है। दुर्योधन का राज्य नहीं है लेकिन क्या कहता है, राज युधिष्ठिर का है, लेकिन दुर्योधन कहता है मेरा है, जो मेरा नहीं है उसको मेरा कहना, वो महाभारत। और रामायण जो अपना है वो भी दूसरे का कहना, राम का राज्य है लेकिन क्या करे, भरत तेरा ही ले ले, तो भरत को दे रहे हैं, तो राम राज है। तो महाभारत से क्या सीखना है कि क्या नहीं करना चाहिए वो महाभारत से सीखना है, क्या करना चाहिए वो रामायण से सीखना चाहिए। आपको महाभारत में बहुत सी चीज़ें जो भगवान कृष्ण बताते वो भी करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि रामायण से कैसे जीना है, दूसरा हम कैसे प्रेम करना चाहिए, और कैसे लीडर बनना चाहिए, और कैसे इस संसार का त्याग करना चाहिए। रामायण से तो बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं, हमारे पास जितना समय है उसमें हम लोग कम से कम चार चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जीवन में जीना है। तो जैसे हम देखते हैं रामायण में कि जिनका राज्य हरण किया गया है, उनकी शक्ति हरण कर ली गई है, और सब कुछ उनका निकाल लिया है, फिर भी वो सुखी है, प्रसन्न है, फिर भी वो दूसरों को प्रेम दे रहे हैं, वो है राम। तो रामायण से हमें ये सीखना चाहिए कि जब जीवन में पूरी तरह से आशाएं निकल जाती हैं, पूरी तरह से हमारा जीवन का कोई शक्ति हरण होती है, हमारा साम्राज्य निकल जाता है, फिर भी व्यक्ति को अपने आप को धीर रखना चाहिए। श्री रामचंद्र जी के जीवन से हम सीखते हैं। देखिए कल जिनका राज्याभिषेक होना है और उसी दिन सुबह मैसेज आता है कि आपको दशरथ महाराज बुला रहे हैं, अभी कोरोनेशन होना है, राज्याभिषेक की तैयारी सब कुछ हो चुकी है, अभी जब खाली जाकर राज आसन पर बैठना है, अभिषेक होना है, उतने में सुबह बताया जाता है कि आपको वनवास जाना है, 14 साल के लिए वनवास जाना है। सोचिए हमारा अगर एक ट्रेन का टिकट भी, ट्रेन का टिकट निकाला हुआ 4 महीने पहले, और ट्रेन चुक जाता है तो कितना दुख होता है, 5-10 हज़ार का मोबाइल अगर घूम जाता है तो कितना दुख होता है, 2 दिन तो खाना नहीं जाता है। देखिए यहाँ पर राम राज्य, श्री राम का राज्य ही पूरी तरह से हरण कर लिया गया है, और इतना ही नहीं कुछ निकल भी जाए लेकिन हमारे प्रेमी व्यक्ति साथ में तो भी व्यक्ति जीवन निकाल देता है, लेकिन यहाँ तो सभी जो दशरथ महाराज है, माता कुछ उनको छोड़कर जाना पड़ता है, जो प्रजा इतनी जीव से भी ज़्यादा प्रेम करती है उनको भी छोड़कर जाना पड़ रहा है, फिर भी अपने धीरज को बनाए रखना। ऐसे समय में भी एक व्यक्ति कौन कर सकता है, जैसे जिसके जीवन का दर्जा अच्छा है, जिसके जीवन में क्वालिटी है, जो मौल्यवान चीज़ों से ज़्यादा नित्य मूल्य को महत्व देता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में धीरज धैर्य रख सकता है, जो उसे धीर व्यक्ति कहते हैं, धीर पुरुष कहते हैं। इस संसार में हम देखते हैं कि कई सारी चीज़ों को हम जो है कुछ भी चीज़ लेनी है, जैसे मोबाइल लेना है, हम लोग पूछते हैं क्वालिटी कैसा है, फंक्शंस कैसे है, क्या या सब्जी मार्केट में जाते हैं तो सब्जी का भाव पूछते हैं, उसका क्वालिटी पूछते हैं, कुछ कीड़ा तो नहीं लगा है, इतना सारा सब चीज़ों में हम पूछते हैं क्वालिटी क्या है। क्या हमने अपने जीवन में कभी पूछा है कि हमारा क्वालिटी क्या है? क्या हमारे जीवन में हम अपने जीवन का दर्जा जो है, जो क्वालिटी है, उसको हमने बनाए रखा है? जो श्री रामचंद्र कि उनके जीवन से हम देखते, क्योंकि जीवन में क्वालिटी गिव्स प्लेजर नॉट क्वांटिटी। जीवन में जो क्वालिटी होती है वो आनंद सुख देती है, न कि क्वांटिटी। हमारे पास कितने फ्रेंड्स है वो आनंद देते हैं, लेकिन ऐसे समय आए कि कोई हमें मारने आए, कुछ हमारे पास संकट आ जाए और बाद में किसी को पूछे तो बोले सबके जेब खाली है, तो हजारों फ्रेंड्स को लेके क्या करेंगे। लेकिन एक कोई हमारे जीवन में संकट आ जाए और एक हमारे साथ खड़ा हो जाए कि अरे भाई मैं तेरे लिए हूँ, बोल क्या कर रहा है, मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए, वही शब्द वही आधार जो बहुत हो जाता है जीवन में। ऐसा नहीं कि हमें फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जो क्वालिटी है वो जरूरी है। वैसे जीवन में एक जैसे हम सब्जी में क्वालिटी, मोबाइल में क्वालिटी, फ्रेंड्स में क्वालिटी ढूंढते हैं, अपने जीवन में भी क्वालिटीज़, कौन से क्वालिटीज़ होने चाहिए, कौन से गुण होने चाहिए, कौन सी नीति मूल्य होने चाहिए, क्षमाशीलता, सहनशीलता, कृतज्ञता, त्याग करने की वृत्ति, ये सारे जो नीति मूल्य हैं हम श्री रामचंद्र के जीवन से सीखते हैं। कि कैसे देखते हैं रावण और श्री राम, रावण जो है अपने जीवन में मौल्यवान चीज़ों को प्राप्त करने के लिए नीति मूल्यों को ठुकरा रहे थे। उनको वहाँ का लंका का राज चाहिए तो कुबेर के साथ झगड़ा कर दिया, पुष्पक विमान चाहिए तो कुबेर के साथ झगड़ा कर दिया, तो सब कुछ इसका था, कुबेर का था, लेकिन झगड़ा करके अपना बना लिया। तो लेकिन वही श्री रामचंद्र के जीवन से हम देखते हैं कि श्री राम मूल्यों के लिए मौल्यवान को त्याग रहे थे। भरत के प्रेम के लिए एक दशरथ महाराज को दिए जो वचन थे, जो मूल्य थे, उसके लिए जो मौल्यवान अयोध्या का जो राज है उसको त्याग दिया। जो अयोध्या का जो राज है कोई साधारण राज नहीं था, ये स्वयं मनु वैवस्वत मनु ने इसका निर्माण किया था। आगे फिर इक्ष्वाकु महाराज उनके जो पुत्र हुए, फिर उसके बाद उनके वंश में भगीरथ महाराज, सागर महाराज आए, फिर भगीरथ महाराज जिन्होंने गंगा स्वर से नीचे लेकर आए, ये वहाँ के राजा बने। उसके बाद कई पीढ़ियों के बाद दशरथ महाराज स्वयं राजा बने, जिन्होंने जो अयोध्या है उसको जो अमरावती इंद्र की जो नगरी है उससे भी सुंदर और मूल्यवान बना दिया। वही श्री राम जब ये समय आया तो मूल्य के लिए उन्होंने जो मौल्यवान जो अयोध्या नगरी है उसका भी त्याग किया। तो नित्य मूल्य रावण मौल्यवान कीमती चीज़ों के लिए मूल्यों को त्याग रहे थे, अपने भाइयों को त्याग रहे थे, नित्य धर्म को त्याग रहे थे, लेकिन श्री राम जो है सत्य के लिए आज्ञा पालन करने के लिए मौल्यवान चीज़ों को भी वो सहजता से त्याग रहे थे। तो ये जो है मूल्यों के लिए हम देखते हैं कि श्री राम जो राजशैया है उसको त्याग कर जो घास की शैया है उसको स्वीकार कर रहे थे। देखिए जो लीडर होता है उसी का आदर्श जो लोग आगे पालन करते हैं। अयोध्या में एक श्री राम लीडर है तो जब भरत महाराज वहाँ आए और जब श्री राम ने तो राज्य का स्वीकार किया नहीं, प्रपादुका लेकर गए वो, लेकिन अयोध्या में जाकर राम सिंहासन पे नहीं बैठे। क्यों? वो बोले कि जो राज सिंहासन श्री राम का है मेरा कभी हो ही नहीं सकता, मैं उस पर कभी बैठ ही नहीं सकता। इसलिए एक वो नंदीग्राम रहे, अयोध्या के बाहर रहे, नंदीग्राम रहे और वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि उन्होंने नया कोई राजमहल बनाया, नहीं, नंदीग्राम में एक वो गुफा बनाई, 14 फीट नीचे जमीन में गुफा बनी और वहाँ भरत महाराज रहने लगे। क्यों? क्योंकि जब मेरे राजा, मेरे आराध्य दैव श्री राम अगर घास के शैया पे सोते हैं जमीन पे, तो मेरा अधिकार, मेरी पात्रता नहीं कि मैं घास के शैया पे सो जाऊँ। मेरे श्री राम के एक लेवल पे मैं नहीं सो सकता, जो वो आराध्य दैव था, इसलिए उन्होंने गुफा नीचे बनाई, भुयार बनाया और वहाँ पे वो नीचे सोते थे। तो एक, क्योंकि जैसे गीता में कहते हैं यद्यत आचरित श्रेष्ठ तत्तत्वेतरो जनः, यद्यत आचरित, जो श्रेष्ठ व्यक्ति जिस प्रकार का आचरण करता है, सर्वसाधारण जो जनता है, समाज है, उसी का पालन करते हैं। अभी आज के समाज में हम देखते हैं जो भी एक सर्व सामान्य व्यक्ति जो है, उनका रहन सहन, हेयर स्टाइल, शूज, सब कुछ जो है किसका जैसा होता है, सब कुछ जो स्पोर्ट्स स्टार्स होते हैं, फिल्म स्टार्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, कोई जो लीडर्स होते हैं, वो जो क्या पहनते हैं, वो क्या कैसा व्यवहार करते हैं, वो कैसा भाषा बोलते हैं, उस प्रकार का सर्वसामान्य जो है जो उसका व्यवहार करते हैं। श्री राम का ये भाव था तो सर्वसामान्य जनता भी जो है वहाँ पर उसी प्रकार से आचरण कर रही थी। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि श्री राम नीति मूल्यों को ज़्यादा महत्व दे रहे थे, जहाँ कि रावण जो है मौल्यवान चीज़ें जो है उसको ज़्यादा महत्व दे रहे थे। और आगे जो है, कभी कभी हमें लगता है कि यहाँ की जो सुविधाएं जो हैं हमें सुख देगी, आनंद देगी, हमारे पास धन होगा, ऐश्वर्य होगा, ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि इस संसार में एक सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है, हमें जीवन जीने के लिए एक सुविधाएँ चाहिए, पैसे की आवश्यकता है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। जैसे कभी कभी कहा जाता है कि कोई भी इतना रईस है कि उसके बाद और कुछ नहीं, खाली पैसा ही है, तो भी वो सुख नहीं हो सकता। जैसे रावण के पास इस संसार की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो रावण के पास नहीं थे, सब कुछ था। इतना ही नहीं, जो इंद्र चंद्र वरुण ये जो देवता है वो भी उनको असिस्ट कर रहे थे, वो भी उनको जो चाहिए था भी देने के लिए तैयार थे। और इतना सारा ईश्वर है, सोने की लंका है, वहाँ के रोड्स भी सोने के हैं, वहाँ की चीज़ें भी सोने की, सब कुछ सोने का है, फिर भी रावण के जीवन में सुख और समाधान नहीं है। तो जो कभी कभी खाली इन चीज़ों के पीछे भागते हैं, ऐसा मतलब इन चीज़ों की आवश्यकता है जीवन जीने के लिए, इन चीज़ों की आवश्यकता है, लेकिन सब कुछ छोड़कर उनके पीछे जो भागते हैं, उनके पास चीज़ें तो रहती है लेकिन सुख समाधान, क्योंकि इस संसार में पैसे से व्यक्ति सब कुछ खरीद सकता है, आजकल समाज में पैसे से व्यक्ति सब कुछ खरीद सकता है, खाली एक चीज़ छोड़कर, सुख और समाधान जो पैसे से नहीं मिलता। जो प्रेम है लोग मिलेंगे, लेकिन हमें एक प्रेम नहीं मिलेगा। पैसे से अच्छा बेड मिलेगा, बेडरूम मिलेगा, लेकिन नींद नहीं मिलेगी। पैसे से एक लोगों की इकट्ठा करेंगे, लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा। तो इसलिए एक श्री राम हम देखते हैं किसको ज़्यादा ध्यान देते हैं, मूल्यों को ध्यान। जब हम जीवन में एक क्षमाशीलता, सहनशीलता, इस प्रकार के मूल्यों को धारण करते हैं, तो जीवन में सुख समाधान का व्यक्ति अनुभव करता है। जैसे जब व्यक्ति नित्य मूल्यों को छोड़कर खाली मौल्यवान चीज़ों के पीछे भागता है, तो राम को छोड़कर रावण के पीछे भागने जैसा है। तीसरे लेख जीवन है, ये रामायण का ये उपदेश है किस प्रकार से जीवन में हमें समाधान सुख इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए नीति मूल्य जो है ये भी बहुत आवश्यक है। श्री रामचंद्र के जीवन में हम जब देखते कैसी कृतज्ञता है, ग्रेटफुलनेस। जब श्री रामचंद्र वापस आए हर कोई वहाँ कई कई का तिरस्कार कर रहे थे, स्वयं उनके पुत्र भरत कई का तिरस्कार करते हैं, कई कई का लक्ष्मण दशरथ महाराज सब ने उनका त्याग किया था, तिरस्कार किया था। जब श्री राम वापस आए तो कई कई उनसे क्षमा याचना करते हैं कि मुझे क्षमा कर दो राम, मैंने बहुत बड़ी गलती की। आपको ऐसा नहीं कि कई कई का श्री राम के प्रति प्रेम नहीं था, श्री राम के प्रति प्रेम था। जब भी सुबह उठते थे सबसे पहले राम को याद करते थे, जब भी कुछ राजभोग आता था सबसे पहले वो राम के महल में ले जाते थे, और श्री राम भी कहीं बाहर से आते पहले कई कई के महल में जाते थे। ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं था, लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थिति याद आती है कि हम गलत लोगों का संग करते हैं और हमारे अपनों को छोड़ देते हैं। जैसे कई कई ने मंत्रा की सुनी, और जब मंत्रा संदेशा लेकर आए कि आपको पता नहीं आपके बारे में यहाँ पर कितना बड़ा कट हो रहा है, 15 दिन से यहाँ पर ये राज्याभिषेक की तैयारी हो रही, एक्चुअली 15 दिन से हो नहीं रही थी लेकिन एक दिन पहले से शुरू हो गए थे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया 15 दिन से राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, आपको पता भी नहीं है, आपको तो दशरथ महाराज जो है वो तो अंधेरे में रख रहे हैं, आप कहते हैं आप तो पटरानी हैं, ऐसा कुछ उनको बड़ा चढ़ा के बता दिया। और तभी मंत्रा को कई कई कहते कि आप गलत है, मूर्ख है, श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा है, इससे सुख कारक इससे भी बड़ी आनंद वाली बात क्या हो सकती है, मेरे तो जीवन का ध्येय था एक दिन राम राजा बने, उसको मैं देख सकूं, कई कई बोल रहे। और लेकिन मंत्रा जो है कहने लगे कि आपको पता नहीं है आप तो मूर्ख है, राम राजा बनेंगे तो कौशल्या राजमाता बनेंगे, आपका स्तर दूसरा आएगा आप पटरानी से नीचे के स्तर पे आ जाएंगे। जैसे ही सुना तो कई कई का मन जो धीरे धीरे बदलने लगा। तो क्या होता है कभी कभी गलत लोग मिल जाते हैं, संसार का स्वभाव है गलत लोग मिलेंगे, स्वाभाविक है, लेकिन कितना संग करते हैं उसके ऊपर अपना जीवन निर्धारित होता है। तो यहाँ मंत्रा के साथ अगर पहले ही उन्होंने उनको बोला होता कि तू जा यहाँ से, मुझे कुछ सुनना नहीं, मेरा जीवन का जो ध्येय था राम का राज्याभिषेक होना चाहिए, मैंने सुन लिया बस हो गया, मुझे मैं तो राम के पास यार इतना बोल दिया तो रामायण होता नहीं आगे। लेकिन यहाँ पे कई कई ने मंत्र का ज़्यादा संग किया, वो बोलते गए और बाद में उनको ऐसा पटाया कि देखो आपका स्तर नीचे जाएगा, कौशल राजमाता बनेंगे, फिर आपको निकाल देंगे, आपको जंगल में भेज देंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ उसके मन में विष खोल दिया गया। तो जब गलत लोगों का संग हो जाता है तो पहले हम जो हमारे संस्कार होते आगे आ जाते हैं, नहीं नहीं ये सिगरेट पीना गलत है, ये पीना गलत है, ये इस प्रकार से व्यवहार करना गलत है। हमारे संस्कार जो माता पिता से जो बाहर से हमारे अच्छे लोगों से आए वो संस्कार पहले बाहर आ जाते हैं, लेकिन हम ज़्यादा गलत लोगों का संग करते हैं फिर वो संस्कार जो है धीरे धीरे अपने पर चढ़ जाते हैं। बोले अरे एक बार करने से क्या होता है, क्या फर्क पड़ने वाला है, अभी तो पिकनिक में आए, चलो चलो कर लेते थोड़ा बहुत। तो क्या होता है ज़्यादा संग कर लिया तो आदमी खींच जाता है, क्योंकि स्वाभाविक है जीव एक तटस्थ शक्ति है। तो अगर अच्छा संग में आ जाए तो जैसे पानी का बूंद होता है वो अगर किसी गर्म तवे पे गिर जाए तो वाफ हो जाता है, वही पानी का बूंद अगर किसी कमल पत्र पे गिर जाए तो मोती जैसा दिखता है, लेकिन वही पानी का बूंद अगर किसी शिंपला जो होता है समंदर में, खुला स्वाति नक्षत्र में खुला शिंपला है उसमें गिर जाए और शिंपला बंद हो जाए समंदर के तल में चला जाए तो वहाँ से मोती बनता है। पानी का बूंद वो एक ही बूंद है लेकिन किसका संग करता है उसके ऊपर उसका जीवन निर्भर होता है। इसलिए हमें अच्छे लोगों के संग में रहना, अच्छे किताबों को पढ़ना, अच्छा वातावरण में रहना, अच्छी चीज़ों को सुनना। जैसे हम लोग यहाँ पर गोवर्धन कॉलेज में आए हैं, बहुत अच्छा है, सबको तो फोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। तो बाकी यहाँ मंदिर है, प्रसाद है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ आने के बाद अगर हम सुनेंगे नहीं, श्रवण नहीं करेंगे, तो हम लोग खाली पिकनिक करके निकल जाते हैं। चलो अच्छा पिकनिक रहा, मोबाइल का कितना 1 GB तो फोटो निकाल दिया है ना। तो हम लोग अच्छा है, संस्कार हो रहे, एक आध्यात्मिक हमें वातावरण में हम लोग घूम रहे हैं, अच्छा ही है। लेकिन अगर सुनेंगे लीलाओं को सुनेंगे, कथा को सुनेंगे, तो इसका और भी लाभ होता है। तो श्री राम माता कैसे कहते हैं कि मैं, आप मुझे क्षमा याचना मत मांगो, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने एक जो मुझे एक वनवास भेजा है, उसकी वजह से मुझे पता चला कि मेरे पिता दशरथ महाराज का मेरे प्रति कितना प्रेम है। श्री राम निकले और तीसरे दिन दशरथ महाराज ने छेरे छोड़ दिए। सोचे क्या, राम को देखे बिना वो जी नहीं सकते थे, इतना प्रेम था श्री राम। सोचे इस संसार में हमारा कोई पुत्र पुत्री होते हैं, कितना प्रेम होता है। इस भौतिक संसार का भले 25, 30, 50, 60 साल का जो संग होता है, उसमें भी हमारा इतना पुत्रों के प्रति, पुत्रों के प्रति इतना घनिष्ठ प्रेम होता है कि कई अगर कभी कभी एंगेज में कोई गुजर जाता, जीवन भर भूल नहीं पाते उसको, भूल नहीं पाते, वो दुख शोक मिटा नहीं पाते। तो सोचिए जब भगवान ही पुत्र बने, वो प्रेम कितना गाढ़ा होगा। दशरथ महाराज इतना प्रेम करते श्री राम से कि वो जैसे ही वनवास गए तो तीसरे दिन शरीर छोड़ दिया। तो श्री राम कहते कई कैसे, क्योंकि आपकी, आपने जो वनवास भेजा उसकी वजह से मुझे पता चला कि मेरे पिता का मेरे प्रति कितना प्रेम है। आपने वनवास भेजा इसलिए मुझे पता चला चित्रकूट में कि भरत मुझसे कितना प्रेम करता है, भरत का जो प्रेम है वहाँ मुझे पता चला। आपकी जो वनवास भेजा उससे मुझे पता चला कि लक्ष्मण का सेवा भाव क्या है। लक्ष्मण जब वनवास तो श्री राम को हुआ था, लक्ष्मण को नहीं था, लेकिन वनवास में लक्ष्मण के, लक्ष्मण निकले श्री राम से पहले, मैं आपके साथ चलूँगा। और 14 साल श्री राम को तो कंदमल फूल फल खिला रहे थे, लक्ष्मण ने 14 वर्ष कुछ खाया भी नहीं, इतना नहीं वो सोए भी नहीं। इसलिए तो इंद्रजीत को मारा उन्होंने, इंद्रजीत को ब्रह्मा जी का वर था कि ऐसा व्यक्ति खाली आपको मार सकता है जिसने कभी 14 वर्ष में भोजन न किया हो और उन्होंने कभी सोया नहीं हो, तो वही व्यक्ति इंद्रजीत को मार सकता है। तो लक्ष्मण थे श्री राम के प्रति प्रेम क्या है, कई सेवा भाव क्या है। लक्ष्मण जो नाम है, जो वशिष्ठ मुनि जब नामकरण कर रहे थे अयोध्या में, जो श्री राम का नामकरण करने आए, उनके सामने बैठ गए, इतने मंत्र मुग्ध हो गए श्री राम को देखकर, मुख से कुछ आवाज नहीं आ रही, नाम सूझ नहीं रहा, लेकिन मुंह खुल गया और मुख से शब्द निकला राम। वो नामकरण वशिष्ठ वशिष्ठ नहीं किया, भगवान ने उनके मुंह से एक और नाम बुलवा लिया राम, जो आनंद के स्रोत है, जो आनंद के भंडार है, ऐसे श्री राम। भरत जिनके लिए इस संसार का जो भी कार्य है, अगर श्री राम की सेवा में ना हो, वो भार है, बोझ है, श्री राम का सेवा ना हो। लेकिन अगर श्री राम की सेवा हो तो संसार का कोई भी भार उठाने के लिए वो तैयार है, वो भरत है। इसलिए तो अयोध्या का राज था, लेकिन श्री राम नहीं, अयोध्या का राज भी जो है उनको जचता नहीं है। फिर लक्ष्मण, लक्ष्मी लक्ष्मणों प्रसन्न, जिनको लक्ष्मी प्रसन्न है। कई बार हम लोग को लगता है कि लक्ष्मी मतलब जो हम लोग दिवाली में लक्ष्मी पूजन करते हैं, लक्ष्मी का पूजन करते हैं और सारी खिड़कियां दरवाजे खुले रखते हैं, कहीं से तो अंदर आ जाए। लेकिन लक्ष्मी मतलब भक्त के लिए लक्ष्मी सेवा, सेवा भाव जो है, भगवान की सेवा प्राप्त होना, ये सबसे बड़ा धन ऐश्वर्य एक भक्त के लिए होता है। तो लक्ष्मण है, और शत्रुघ्न जिन्होंने शत्रु का दमन किया है वो शत्रुघ्न। लेकिन वैसे हम इसमें देखते हैं रामायण में शत्रुघ्न ने ज़्यादा कोई युद्ध नहीं किए, खाली एक ही युद्ध किया मथुरा का जो लवणासुर था उसको उन्होंने वध किया था। लेकिन उनको शत्रुघ्न क्यों कहते हैं जिन्होंने शत्रु का दमन किया है? शत्रुघ्न इसलिए कहते कि उन्होंने एक इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त किया है। सारा अयोध्या का प्रवाह जो है श्री राम की सेवा की ओर है। लेकिन शत्रुघ्न एक ही अयोध्या में ऐसी व्यक्ति है जिनका सेवा भाव भरत के प्रति है। तो अगर सारा समाज के साथ प्रवाहित होते जा रहे तो ज़्यादा कोई कष्ट नहीं लेते, क्योंकि प्रवाह के विरोध में किसी और चीज जाना है तो कष्ट लगता है। तो एक क्योंकि उनका इंद्रियों के ऊपर विजय था इसलिए उनको शत्रुघ्न कहते हैं। तो इस प्रकार श्री राम कहते हैं कि हे माते कैकेयी, आपकी वजह से मुझे पिता का प्रेम पता चला, भरत का प्रेम पता चला, लक्ष्मण का सेवा भाव पता चला, सीता की पतिव्रता मुझे पता चली, और साथ साथ मुझे एक गुहा सुग्रीव जैसे मित्र प्राप्त हुए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि श्री राम जीवन में जो दोष होते हैं उसके प्रति दुर्लक्ष करते हैं, जो अच्छाई है उसको स्वीकार करते हैं। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है कि चीज़ें जो है दूषित होगी, लेकिन हमारे अंदर क्षमाशीलता है, हमारे अंदर सहनशीलता है, हमारे अंदर अगर अच्छे गुण है, कृतज्ञता है, तो संसार के जो गलत चीज़ है उसको भी पॉजिटिव में बदलने में हमको मदद होती है। तो श्री रामचंद्र के जीवन से हम देखते हैं कि कैसे वो जीवन में नीति मूल्यों को महत्व देते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि जीवन में कैसा प्रेम करना चाहिए। जैसे हम प्रेम करते हैं, लेकिन खाली प्रेम करते हैं, लोगों के ऊपर जबरदस्ती करते हैं। हम लोगों को कहते हैं जिसे हम प्रेम करते हैं उनसे कहते हैं कि मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ, आपको समझता नहीं, आप टाइम भी क्यों नहीं आए। तो हम उनको कई बार प्रेम की वजह से जबरदस्ती करते हैं, और हम चाहते हैं हम आपसे प्रेम करते हैं तो आप हमारे लिए ऐसा होना चाहिए। हम क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं, आपका स्वभाव ऐसा होना चाहिए। माइक भी हिल गया। देखिए आप मुझे सुना रहे हो लेकिन तुम्हारा भी ख्याल रखो। तो यहाँ हम कई बार लोगों से प्रेम करते हैं लेकिन अपने जैसा उनको व्यवहार करने के लिए कहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते इसलिए आप ऐसा कपड़ा पहनो, हम आपसे प्रेम करते इसलिए ऐसी चीज़ों को ऐसा व्यवहार करो। लेकिन प्रेम मतलब स्वीकृति से स्वीकार करना, व्यक्ति की स्वीकृति लेकर उसको प्रेम करना। प्रेम जो है कई बार एक तरफ होता है, लेकिन प्रेम जब सामने वाला भी कहता है कि मुझे आपकी तरह व्यवहार करने में आनंद आता है, तो वो सही तरह से प्रेम होता है। क्योंकि इस संसार में कोई चीज़ परिपूर्ण नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है। आज संसार में क्यों रिलेशंस में प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, फिर वो फ्रेंड सर्कल में हो, बाकी वैवाहिक जीवन में हो, क्योंकि हर जगह हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, परफेक्शन चाहिए। मेरा पति ऐसा परफेक्ट होना चाहिए, कोई भी स्त्री होती है उसे लगता है कि मेरा पति राम जैसा होना चाहिए, और जो पति होता है उसे लगता है मेरी पत्नी सीता जैसे होनी चाहिए। लेकिन सीता जैसी पत्नी के लिए आप खुद भी राम होना चाहिए, और राम जैसे पति चाहिए तो हमें सीता बनना चाहिए। लेकिन हम खाली जैसे एक व्यक्ति था उसको शादी करने थे, एक साल हो गया, दो साल है, लड़की ढूंढ रहे, 5-6 साल निकल गए। एक फ्रेंड ने पूछा अभी 5-6 साल हो गए कितने, अरे बहुत लड़कियां ढूंढी, तो एक 6 साल में एक लड़की नहीं मिली। बोले एक मिली थी तो क्यों शादी नहीं की, बोले परफेक्ट लड़की चाहिए थी तो परफेक्ट लड़की नहीं मिले। बोले मिली एक तो फिर क्यों नहीं शादी, बोले नहीं उसको परफेक्ट लड़का चाहिए था। तो कई बार जो है इस संसार में हम जो है खाली चीजों में परफेक्शन ढूंढते, लेकिन जब जो चीज हम स्वीकारते हैं, जैसे हवा दूषित होती है फिर भी उसको लेते हैं ना, मुंबई में घूमते हैं क्या हवा बहुत शुद्ध है, ठीक है यहाँ खेत में घूम रहे तो शुद्ध हवा होती है, लेकिन हम लोग कहाँ मार्केट में कहाँ कहाँ शुद्ध होता है, लेकिन हवा का स्वीकार करते हैं ना, नहीं तो कोरोना जैसा बंद हो जाता है सब कुछ नहीं। तो हमें एक जो दूषित है उसका पानी दूषित है लेकिन उसको स्वीकारते हैं। अगर सारी चीज़ों में अन्न दूषित है, इतने सारे केमिकल्स होते हैं लेकिन हम खाते हैं, अन्न दूषित है फिर भी खाते हैं, हवा दूषित फिर भी लेते, पानी दूषित फिर भी लेते, फिर आदमी में कुछ दोष है भी क्यों नहीं स्वीकारते हैं। हमारे साथ जो लोग हैं उनमें भी कुछ इंफरफेक्शन हो सकते हैं, कोई अपूर्णता हो सकती है, फिर भी उसे स्वीकारना, इसे कहते हैं महानता, इसे कहते हैं प्रेम। प्रेम मतलब परफेक्ट होने के बाद ही मैं प्रेम करूंगा तो हमारा जीवन निकल, और कितने सारे जीवन निकल जाएंगे। श्रील प्रभुपाद में एक लोगों में परफेक्शन नहीं ढूंढा, श्रील प्रभुपाद ने लोगों से प्रेम किया। आज संस्था इस्कॉन के जो संस्था का आचार्य श्रील प्रभुपाद है, कहाँ प्रचार किया उन्होंने, अमेरिका में जो 1965 में श्रील प्रभुपाद जो पाश्चात्य देश में गए, हिप्पी समाज तक, हिप्पी मतलब जितने यहाँ यहाँ इतने सारे लंबे बाल थे, और घरदार छोड़ के लोग जो है बावरी में जैसे झोपड़े या छोटे छोटे घर बांध के खुले रहते थे, कोई कपड़े पहनते थे नहीं पहनते थे, गांजा पीकर ब्राउन शुगर पीकर पूरा दिन पड़े रहते थे, बावरी वो जगह था। ऐसे एरिया में श्रील प्रभुपाद गए, ऐसी जगह जाकर श्रील प्रभुपाद ने उनको खाली क्या दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, खाली भगवान का नाम दिया, भगवान का प्रसाद दिया, जैसे थे उसको श्रील प्रभुपाद ने स्वीकारा। प्रेम मतलब जैसा है वैसे स्वीकार। जैसे एक बार एक भक्त की लड़की थी, वो आकर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से कहते कि महाराज मैं कॉलेज में जाती हूँ तो मेरे जो फ्रेंड्स है वो कोई भक्त नहीं है, तो मुझे उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, मैं तो घर में बचपन से जन्म से मैं भक्ति मार्ग का आचरण कर रही हूँ, लेकिन जो फ्रेंड्स है वो तो नए हैं, उनको कुछ पता भी नहीं है, कोई भक्त नहीं, तो कैसा उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो महाराज जी कहते हैं कि वो जैसे हैं यू एक्सेप्ट देम व्हाट दे आर, यू रिस्पेक्ट देम व्हाट दे आर, देन दे विल एक्सेप्ट यू व्हाट यू आर, देन दे विल रिस्पेक्ट यू व्हाट यू आर। आप वो जैसे हैं वैसा उनका स्वीकार करो, वो जैसे भी हैं वैसा उनको आदर करो, फिर क्योंकि जैसे थे वैसे आपने स्वीकार किया आदर किया, वो भी आप जैसे हैं वैसा आपका स्वीकार करेंगे वैसा वो आपको आदर करेंगे। तो ये जो है इसे कहते हैं प्रेम, प्रेम से स्वीकारना, न कि परफेक्ट होने के बाद एक जो अच्छे हैं तो सब प्रेम करते हैं, लेकिन जब किसी में दोष है गलत है फिर भी उसे एक स्वीकारना। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आपको दूध चाहिए तो गाय की लात खाने के लिए भी तैयार होना चाहिए। आपको अभी शहर में तो गाय का इतना अनुभव नहीं होता है लेकिन यहाँ जो खेत में जाते हैं गाय का दूध निकालते हैं उनको पता है कि आप जब दूध निकालने जाते हो कभी कभी गाय दूध तो देती है, बड़ा पौष्टिक होता है, अमृत होता है, लेकिन कभी कभी लात भी मिलती है। तो वैसे किसी से जब हम प्रेम करते हैं तो इस संसार में एक कोई परिपूर्ण नहीं है, इसलिए जब संसार में प्रेम करते हैं तो जैसे हैं वैसे उसको स्वीकार करना, क्योंकि हम अपरिपूर्ण है। भगवान ने इस संसार में एक अपूर्णता इतनी पूर्ण रूप से निर्माण किए है कि उसको कभी सुधार नहीं सकते, अपूर्णता इतनी पूर्ण रूप से निर्माण की है उसको सुधारना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए इस संसार में अगर हम परफेक्ट होगा कोई परिपूर्ण होगा ये सोचकर जाते हैं तो बड़ी कई बार जो है हम अपने आप को धोखा खाते हैं या कभी अपने आप को नैराश्य में ले जाते हैं या कभी कभी हम अपने आप को कठिनाई में डालते हैं। इसलिए क्योंकि भगवान भी जो है हम अपूर्ण है, हमारे अंदर कोई दोष है, फिर भी भगवान स्वीकार कर, जैसे हम गीता में कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्ता प्रयश्यति, आप पत्र खाली अर्पण करो या फूल अर्पण करो, खाली मेरा नाम ले लो। जैसे अजामिल ने जब नाम लिया तो भगवान के लिए नाम नहीं लिया था, अपने बच्चे के लिए बुला रहा था नारायण नारायण, और भगवान आ गए। उन नाम में कोई प्रेम नहीं था, वो तो बच्चे को बुला रहे थे, फिर भी एक अपूर्ण है भगवान ने स्वीकार कर लिया। इसमें भागवत में देखते आठवें स्कंद, गजेंद्र वो मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया है, अपने आप को छोड़ाने के लिए बड़ा कोशिश करता है, कुछ कोई बचा नहीं पाता है, तो अंत में एक फूल निकाल लेता है और जो भी भगवान हो उसे स्वीकार कर लो, भगवान का नाम ही नहीं बुलाता है। अजय मैंने नाम बुलाया लेकिन भाव नहीं था, यहाँ इसने नाम बुलाया भाव है लेकिन नाम नहीं है गजेंद्र के, फिर भी भगवान आ गए गरुड़ के ऊपर बचा लिया। पूतना तो जब गई तो खाली माँ का एक अप्सरा का रूप, देवी का रूप धारण करके गए, लेकिन विष लेकर भगवान को मारने गए, फिर भी भगवान ने उसका स्वीकार किया और भगवत धाम में उसको माता का स्थान दिया, आया का धात्री का नर्स का स्थान दिया। तो भगवान जो है हमारे अंदर में परफेक्शन ढूंढते नहीं है, तो इस संसार में कैसे प्रेम करना चाहिए, जैसे कई कई में सब लोगों ने दोष देखा, जितने भी दशरथ महाराज अलग भरत सब ने दोष देखा, लेकिन श्री राम ने उसमें भी कृतज्ञता से उसको स्वीकार किया। तो ये जो है श्री रामायण से हम देखते हैं कि सुग्रीव में उन्होंने देखा जैसा जटायु पक्षी है मांसाहार करता है, भगवान ने उसका सेवा स्वीकार किया। जटायु का जो दशरथ महाराज के समय जो मंत्र नहीं बोल सके अंत संसार के, वो जटायु के लिए भगवान ने श्री राम ने बोल दिए। पिता का संस्कार का मंत्र अंत संस्कार का मंत्र जटायु के लिए बोला उन्होंने। सुग्रीव भोग विलास में मस्त थे, उसको भी भगवान ने मित्र बना दिया। और भगवान श्री राम लेके विभीषण को शरण देते समय बोले कि अगर रावण भी आ जाए तो उसको भी मैं शरण दे दूंगा। तो लोग पूछे कि भगवान अगर आपने रावण को शरण दिया तो रणलंका का राज्य आप रावण को दे देंगे, फिर विभीषण को तो आपने पहले राज्य अभिषेक कर दिया है, उसका क्या? तो बोले अगर रावण शरण आएगा तो रावण को लंका का राज्य दे दूंगा, विभीषण के लिए मैं अयोध्या का राज्य दे दूंगा, और मैं वापस रावणवश में चला जाऊंगा। तो ये एक भगवान का प्रेम है अपने भक्तों के प्रति, अपने नित्य मूल्यों के प्रति। तीसरे प्रकार रामायण जो है लीला है, प्रेम पूर्ण लीला है, मधुरता है, साथ साथ हिस्ट्री है, इतिहास है, और इसके इससे सीखने के लिए एक अनंत ऐसी नीति मूल्य है, शिक्षाएं है, जिससे उसको पढ़ना सीखना और अपने जीवन में उतारना, उससे हम जो श्री राम आनंद के भंडार है, आनंद के स्रोत है, वो आनंद का हम अपने जीवन में भी अनुभव कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुमने रामायण के ऊपर थोड़ी कथाएं सुनी और अभी यहाँ आरती होगी, प्रभु जी कुछ अनाउंसमेंट करेंगे।
हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान रूपरूपनाथ प्रभु जी। तो बहुत ही सुंदर कथा की प्रभु जी ने, कैसे एक जीवन शैली श्री रामचंद्र जो है हमको सिखाते हैं, कैसी हमारी जीवन शैली होनी चाहिए, कैसे हमको दूसरों से प्रेम करना चाहिए और हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, और कैसे जो मूल्यवान वस्तु है उससे भी मूल्यवान है हमारे जीवन के मूल्य, तो उसको प्राधान्य देना चाहिए। और अगर हमको परफेक्ट पति या पत्नी चाहिए तो उसके पहले हमको खुद को परफेक्ट होना पड़ेगा, बराबर ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनका धन्यवाद व्यक्त करेंगे हम तीन बार एक साथ हरी बोल बोल के, हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरे कृष्णा। तो आप सभी का आभार, हम आभारी है क्योंकि आप यहाँ पे आपका कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे बहुत सुंदर अभी राजभोग आरती होगी। तो हम श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी और श्री गौरांग महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। कितने लोग पहली बार आए यहाँ पे, हाथ ऊपर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उनके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि आज का ये दिन
आपके उज्जवल कृष्ण भावनामय जीवन की शुरुआत बने, शुभारंभ बने, और आप ऐसे ही हर रविवार यहाँ पे आके हमको प्रेरणा देते रहे। तो जो यहाँ पे पहली बार आए हैं तो उनके लिए राजभोग आरती के बाद अंत में कुछ उपहार भी होगा, तो उपहार ले सकते हैं, यहाँ पे टेबल रहेगा तो वहाँ से आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सब लोग खड़े हो जाएंगे हम राजभोग आरती के लिए।